ये आकाशवाणी है। अब आप प्राची प्रिया से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यबल गठित किया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कोलकाता के अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान कार्यबल को 3 सप्ताह के भीतर अंतरिम और 2 महीने के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत देश से डॉक्टरों का एक राष्ट्रीय कार्यबल सृजित कर रही है। ये कार्यबल ऐसे दिशा निर्देशों की सिफारिश करेगा जो पूरे देश में लागू हो सकेंगे। इधर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने उसके कार्यालय से इस मामले की जांच से संबंधित सोशल मीडिया पर प्रसारित एक फर्जी पत्र के बारे में लोगों को आगाह किया है। सीबीआई ने पत्र और उसकी सामग्री को फर्जी बताया है। इसमें एक सीबीआई अधिकारी के नाम का उल्लेख है जो मामले की जांच वापस लेने की मांग कर रहा है। भाजपा ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की सरकार की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि मामले से जुड़े साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महाराष्ट्र सरकार ने बदलापुर में एक स्कूल की छात्रा से यौन उत्पीड़न मामले की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि ठाणे पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि वे इस मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में करने संबंधी प्रस्ताव दें। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देश के बारे में नौकरशाही में लेटरल एंट्री से संबंधित विज्ञापन रद्द दिया है। इससे पहले सरकार ने यूपीएससी को इस विज्ञापन को रद्द करने का निर्देश दिया था। हाल ही में यूपीएससी ने केंद्रीय मंत्रालयों में 45 संयुक्त सचिव, निदेशक और उप सचिवों को नियुक्त करने से संबंधित एक विज्ञापन जारी किया था। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी की अध्यक्ष प्रीति सुदन को लिखे पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि लेटरल एंट्री की प्रक्रिया संविधान में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों, विशेषकर आरक्षण के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लेटरल एंट्री को आरक्षण के प्रावधानों के साथ जोड़ने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में जारी है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हुआ है। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत के लिए एक्ट ईस्ट नीति का विस्तार है। वार्ता के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। बैठक में जापान की रक्षा मंत्री किहारा मेनोरू और विदेश मंत्री सुश्री योको कामिकावा भी शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मासिक बुलेटिन के अनुसार चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में आने वाला सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई 26.4% बढ़कर $22.5 बिलियन हो गया है। पहली तिमाही में निवेश में उछाल के कारण शुद्ध निवेश में $6.9 बिलियन की बढ़ोतरी हुई, जो कि इस अवधि में पिछले साल $4.7 बिलियन थी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा होने की संभावना है। सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में यानिका सिनर ने पुरुष में और महिला वर्ग में एरियाना साबालोंका ने खिताब जीता। विश्व के नंबर 1 पुरुष खिलाड़ी यानिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में अमरीका के फ्रांसिसी टियाफो को 7-6, 6-2 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।